यरमिया की पुस्तक अध्याय 26। अध्याय 22 में यहोवा ने यरमिया को आदेश दिया था कि वो राजा सिदकिया के घर में जाकर उसे भविष्यवाणी का वचन सुनाए। अतः ये भविष्यवाणियां यरमिया ने सिदकिया को दी है, जो बाबुल की बंदवाई से पूर्व इसराइल का अंतिम राजा था। सिदकिया के दरबार में भविष्यवाणियां देते समय यरमिया उन भविष्यवाणियों का उल्लेख कर रहा है जो यहोवा ने यरमिया को सिदकिया पूर्व अन्य राजाओं और सिदकिया के लिए दी थी। इस प्रकार अध्याय 26 में वो सिदकिया को कहता है, यरमिया अध्याय 26 पद 1 और 2, योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से ये वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूं, कह दे, उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। मेरे विचार में प्रायः हमारा ये स्वभाव है कि हम परमेश्वर के वचन में काट छाट कर देते हैं, और हमारे लिए ये एक आम बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्मशास्त्र के कुछ विषयों के मुद्दे उठाए हुए हैं, और क्योंकि वे विवाद का विषय बन गए हैं, अतः उनका स्वभाव ये हो गया है कि उनमें काट छाट कर दे। मेरे विचार में ये उचित नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप वचन का अर्थ ज्यों के त्यों नहीं रह जाता है, अर्थात जैसा परमेश्वर ने कहा था। मेरी समझ में ये अत्यधिक घातक बात है कि हम वचन में काट छाट करें, क्योंकि ऐसा करने से हम मनुष्य को झूठी संतावना प्रदान करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अनंत दंड के विषय को मुझसे अधिक नापसंद करे। यदि अपनी पसंद के कारण मैं पापियों के भविष्य के विषय में परमेश्वर के वचन में काट छाट कर दूं, तो मेरे लिए ये निंदा का कारण होगा, क्योंकि इस प्रकार मैं मनुष्य को झूठी आशा और झूठी संतावना दूंगा। परमेश्वर यरमिया से कह रहा है, देख यरमिया, मैं जो कुछ तुझसे कह रहा हूं उसे ज्यों का त्यों इन्हें कह दे। संदेश में जरा भी नम्रता का प्रदर्शन नहीं करना, अर्थात उनमें से एक बिंदु भी कम न करना। दो ऐसी बातें हैं जिनके लिए हमें मना किया गया है कि हम ना करें। एक तो यह कि हम वचन में कुछ ना जोड़ें, दूसरी बात ये कि हम वचन में से कुछ ना घटाएं। जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी, तब उसने उसे एक चेतावनी दी थी, सावधान रहना कि तू ना तो इस पुस्तक के वचन में कुछ जोड़े और ना ही उसमें से कुछ घटाए। और जब प्रकाशित वाक्य की अंतिम पुस्तक लिखी गई थी और परमेश्वर ने उस प्रकाशन पर मोहर लगा दी थी और कहा था, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 18 और 19, मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। अतः परमेश्वर अत्यधिक दृढ़ है कि हम उसके वचन को उसी रूप में प्रस्तुत करें जिस रूप में उसने हमें उसे दिया है, ना तो उसमें कुछ जोड़ने की इच्छा रखें और ना ही उसमें से कुछ घटाने की इच्छा रखे। यही कारण था कि परमेश्वर ने यरमिया को चेतावनी दी कि वह उसके संदेश में से एक शब्द भी कम ना करे। यरमिया अध्याय 26 पद 3। संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। यहां परमेश्वर यरमिया से कहता है, उन्हें अच्छे से सुना दे और इसके संदेश में से एक भी शब्द कम नहीं करना। हो सकता है कि वे मेरी बातें सुने। मनुष्य को अपना संदेश देने में परमेश्वर का एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य को भूल सुधारने का एक अवसर प्राप्त हो। आप कहेंगे, क्या परमेश्वर नहीं जानता कि वे सुधरेंगे या नहीं? जी हां, परमेश्वर जानता है। यदि परमेश्वर जानता है कि वे सुधरेंगे नहीं, तो वो उनसे बात ही क्यों करता है? इसका कारण यह है कि परमेश्वर न्याय करते समय धर्म का न्याय करना चाहता है, कि कोई खड़ा होकर यह ना कहे, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैंने तो कभी सुना ही नहीं था, या मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला। अतः परमेश्वर कहता है, एक शब्द भी नहीं घटाना जिससे कि वे सुने। यदि वे सुनेंगे और इस समय भी यदि वे मन फिराएंगे तो वे बच जाएंगे। और परमेश्वर ने कहा, उस बुराई के लिए जो मैंने सोची, मैं खुद पछताऊंगा। हमें परमेश्वर के कामों के लिए मानवीय भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अतः जब हम परमेश्वर के पछतावे के विषय बात करते हैं, तब हमें ये ध्यान रखना है कि हम सीमित मानवीय भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मूल भाषा को जो शब्द पछतावे के लिए यहां काम में लिया गया है, उसका अंग्रेजी में उच्चारण है साई। उसका अर्थ है राहत की सांस। यदि वे परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे तो परमेश्वर राहत की सांस लेगा कि अब उसे उन्हें दंड नहीं देना होगा। मैं भी कई बार अपने बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन देखकर राहत की सांस लेता हूं। ओह पापा, मुझे क्षमा करना, कितना अच्छा लगता है। अब यदि वे ऐसा स्वभाव रखें तो आप उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। आपको उनकी ना पिटाई करनी होगी, ना ही उन्हें दंड देना होगा। वे पश्चाताप के मन से आपके पास आते हैं और आपको कहना ही पड़ता है, ओह, और आपको ये मन भावन लगता है। आप परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं कि आपको अब उन्हें दंड नहीं देना है। अतः परमेश्वर कहता है, संदेश में से एक भी शब्द मत घटाना, मैंने जैसे कहा वैसे ही कहना, कुछ मत घटा, जिससे कि वे पश्चाताप करें और मैं राहत की सांस लूं कि मुझे अब उन्हें दंड नहीं देना पड़ेगा। परमेश्वर ने एहेस्केल से कहा था, एहेस्केल अध्याय 33 पद 11। सो तो उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। दुष्ट को मरता देख परमेश्वर को कैसा दुख होता है। परमेश्वर उन्हें यथासंभव अवसर प्रदान करता है कि वे मन फिराकर उसे जाने और उसे प्रेम रखे। मन फिराओ, तुम क्यों मरना चाहते हो? ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि किसी का नाश हो। परमेश्वर ने अपने धीरज को, अपनी सहनशीलता को और अपने अनुग्रह को बहुत अधिक खींच रखा है। यही कारण है कि बहुत देर हो जाने के बाद भी परमेश्वर भविष्यत वक्ता को उनके पास भेजता है। अब भी जाकर कह, संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। उनकी हानि यही थी कि परमेश्वर ने बाबुल के राजा को नियुक्त किया था कि वो उनके लिए परमेश्वर के दंड का साधन हो और उनका विनाश करे। आप ये न समझे कि परमेश्वर बुराई करता है। पछताऊं से आप ये न समझे कि परमेश्वर ने कोई बुराई की है और वो पछताएगा तथा क्षमा किया जाएगा। बाइबल हमसे कहती है, पहले सैमुअल 15:29, वो ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि पछताएगा। परमेश्वर ने मलाकी के मुख से कहा, मलाकी 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। यह है परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता। तथापि परमेश्वर का अनुग्रह और करुणा देखिए। परमेश्वर ने यशया के मुख से कहा था, क्या मैंने दुष्टता को नहीं बनाया? ये मनुष्य पर आने वाली विपत्ति अर्थात दंड की व्याख्या है। यहां यह न सोचिए कि परमेश्वर का दुष्टता के साथ कोई साठ गांठ है। यरमिया 26:4-6। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यो कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है ना चलो और ना मेरे दास भविष्यत वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूं परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को शीलों के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यनाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे। शीलो वो स्थान था जहां इसराइल के वंशजों ने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करते ही सबसे पहले मिलाप का तंबू गाड़ा था। यही शीलो आज निर्जन और उजाड़ हो गया है। यरमिया कहता है, यदि तुम परमेश्वर की वाणी नहीं सुनोगे तो वो इस भवन को शीलो के समान उजाड़ देगा। यरमिया के इस संदेश पर याजक क्रोधित हुए, क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर के विरोध में कह रहा था कि परमेश्वर का श्राप उस पर पड़ेगा, उसे उजाड़ दिया जाएगा। यरमिया 26:7-8। जब यरमिया ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यद्वक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। और जब यरमिया सब कुछ जिसे सारी प्रजा के कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यद वक्ताओं और सब साधारण लोगों ने ये कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड होगा। ये सुनकर प्रजा ने जो याजकों और झूठे भविष्यद वक्ताओं के बहकावे में थी, यरमिया को पकड़ लिया और उसे मारने का निर्णय लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के भवन के विरुद्ध भविष्यवाणी की थी कि मंदिर का नाश होगा। उन्होंने कहा, यरमिया 26:9, तूने क्यों यहोवा के नाम से ये भविष्यवाणी की कि ये भवन शीलों के समान उजाड़ हो जाएगा और ये नगर ऐसे उजड़ेगा कि उसमें कोई ना रह जाएगा? उस पर मंदिर और नगर के विरुद्ध बोलने का आरोप लगाया, क्योंकि उसने उन पर आने वाले परमेश्वर के दंड की घोषणा की थी। यरमिया 26:9-10। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यरमिया के विरुद्ध भीड़ लगाई, यहूदा के हाकिम। यहां आप देखते हैं कि ये तीसरा समूह है, भविष्यद वक्ताओं और याजकों ने यरमिया को पकड़ लिया और कहा, हम तुझे जान से मार देंगे। प्रजा भी भविष्यद वक्ताओं और याजकों के साथ हो गई, हां हां उसे मार डालो, उसने मंदिर और यरूशलेम के विरोध में कहा है। यहूदा के हाकिम, यरमिया अध्याय 26 पद 10 ये बातें सुनकर राजा के भवन से उन्होंने मंदिर में कोलाहल शोर शराबा सुना कि लोगों ने यरमिया को पकड़ लिया है। अतः यहूदा के हाकिम तुरंत वहां आए। यरमिया अध्याय 26 पद 10 से लेकर 12 तक यहोवा के भवन में चढ़ाए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, ये मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यरमिया ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, वो याजकों और भविष्यद्वक्ताओं को अनदेखा करके हाकिमों की ओर उन्मुख हुआ और कहा, यरमिया अध्याय 26 पद 12 से लेकर 14, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो, तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूं, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। परमेश्वर ने मुझे भेजा कि तुम्हें ये संदेश दूं कि अपने मार्गों से अपनी दुष्टता से मन फिराओ, कि परमेश्वर तुम पर ये न्याय ना लाए। मैं तो यहां केवल परमेश्वर का संदेश वाहक हूं, मुझे परमेश्वर ने यह संदेश देकर भेजा है। अब मैं तुम्हारे हाथ में हूं, जो चाहो सो करो। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। यरमिया अध्याय 26 पद 15 और 16, पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हथियारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। तब हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा, ये मनुष्य प्राण दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। देखिए, लोग कैसे चंचल होते हैं। वे भविष्यद्वक्ताओं और याजकों के साथ हो लिए थे, क्योंकि यरमिया ने मंदिर और यरूशलेम के विरोध में कहा था। लातिनी भाषा में कहावत है कि जन समुदाय की आवाज परमेश्वर की आवाज होती है। देखा जाए तो ये सही नहीं है। कई बार जन समूह भयंकर भूल कर बैठता है। यहां जन समूह भविष्यत वक्ताओं और याजकों के साथ है, आओ हम उसे मार डालें। जब हाकिम आए तो वे कहने लगे कि सचमुच प्राण दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। यरमिया अध्याय 26 पद 17 से लेकर 19 तक, और देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों मोरसोती मिखाया भविष्यवाणी कहता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने वा किसी यहूदी ने उसको नहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय ना माना और उससे विनती ना की? और जब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उसके विषय क्या वो ना पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। पुरनियों ने कहा, हिजकिय्याह राजा के दिनों में मिखाया मीका ने भी कहा था कि सियोन जोतकर खेत बन जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिया ने या किसी यहूदी ने उसको कहीं मार डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती ना की? तब उन्होंने कहा, यरमिया अध्याय 26 पद 20। फिर शमाया का पुत्र उरिया नाम किरियात यरीम का एक पुरुष जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी कहता था, उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी की जैसे यरमिया ने अभी की है। आपको ध्यान होगा कि उरिया ने भी ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। यरमिया अध्याय 26 पद 21 से लेकर 24 तक। और जब यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया और उरिया ये सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। तब यहोयाकीम राजा ने मिस्र को लोग भेजे, अर्थात अकबोर के पुत्र एलनाथान को कितने और पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा, और वे उरिया को मिस्र से निकालकर यहोयाकीम राजा के पास ले आए और उसने उसे तलवार से मरवाकर उसकी लोथ को साधारण लोगों के कब्रों में फिकवा दिया। परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यरमिया की सहायता करने लगा और वो लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया। प्राचीनों ने कहा कि ऐसी भविष्यवाणियां पहले भी की गई है और हिजकिया ने तो उन्हें मरवा नहीं डाला। उन्होंने कहा, हां ऐसी भविष्यवाणी पहले अवश्य दी गई थी, परंतु यहोयाकीम ने उरिया को मिस्र से निकलवाकर मार डाला था। अब उनमें दो पक्ष हो गए थे, परंतु अहीकाम ने यरमिया का पक्ष लिया और यरमिया याजकों, झूठे नबियों और जनता के हाथों मृत्यु से बच गया।